लगन बस एक यही लगी 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 लगन बस एक यही हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है लगी लगन बस एक यही लगी लगन बस एक यही हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है लगी लगन बस एक यही लगी लगन बस एक यही
ओम शांति ओम शांति ओम शांति प्यारे बाप दादा की बेहद घर मधुबन में और बेहद घर के इस मनमोहिनी वन परिसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है बहुत दूर से हिंदी न जानते हुए भी बहुत रुचि से हिम्मत से आप सभी यहाँ पधारे हैं विशेष तपस्या के। हम सबके जीवन में तपस्या का विशेष महत्व है। संगम युग में प्रैक्टिकल पुरुषार्थ हम करते हैं और भक्ति में फिर उसका यादगार बनता है। भल रोज व्यक्ति भक्ति करते हैं पूजा पाठ करते हैं फिर भी श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास में चातुर्मास में विशेष तपस्या कर विशेष व्रत उपवास धर्म ध्यान दान पुण्य यज्ञ होम हवन ये सब कुछ करते हैं आंध्र प्रदेश में करते हैं हाँ श्रावण मास आता है अच्छा बहुत अच्छा। जैन भाई बहने भी भल सारा वर्ष तो अपना पूजा पाठ करते हैं पर पर्युषण मास में बहुत कड़े उपवास करते हैं शास्त्र पठन कथा श्रवण करते मुस्लिम भाई बहने रमजान मास में उपवास करते हैं हमने पढ़ा है क्रिश्चियन धर्म में भी ईस्टर के दिनों में 15 दिन उनके ऐसे आते हैं जब वे विशेष तपस्या करते हैं। तो हर धर्म में तपस्या का महत्व है। हम सभी तो है ही योगी आत्माएं, हमने भोग मार्ग छोड़ दिया है, हम योग मार्ग के राही हैं, हम पवित्र योगी आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं तुम बेहद के सन्यासी हो, बेहद के वैरागी हो, अब तुम गृहस्थी नहीं लेकिन क्या हो, ट्रस्टी हो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम कमल फूल समान पवित्र आत्माएं हैं। बाबा के सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से हम सच्चे पक्के ब्राह्मण आत्माएं हैं। कितना ऊंचा बाबा ने जीवन बना दिया है। भल हम रोज योग करते हैं, बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं और बहुत ऊंची धारणाएं, नियम मर्यादाएं हमारे जीवन में धारण हुई है, लेकिन जैसे शरीर के लिए रोज स्नान करते हैं, फिर भी हफ्ते में 10 दिन में कहते हैं आज अच्छी तरह से स्नान किया, समय देकर अच्छी तरह से स्नान करते हैं, बाल धोते हैं, घर में रोज झाड़ू पोछा हम करते हैं, फिर भी मास दो मास में अच्छी तरह से सफाई करते हैं, कोने कोने की सफाई करते हैं, जहां भी जाले लगे हैं, धूल मिट्टी है, साफ करके। तो हम सभी भी बाबा ने हम बच्चों के लिए भट्टी के प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें आप सभी समय निकाल कर सभी बातों से फारीग होकर मधुबन में आते हैं। वहां तो आप मुरली क्लास करते हैं और फिर भागते हैं, नौकरी जाना है, घर जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो मुरली क्लास के बाद फटाफट भागते हैं ना, घर जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। तो आप सभी इसलिए खास समय निकाल करके आए हैं ताकि हम अपने आप को शांति से देखें, अपने मन बुद्धि संस्कार को चेक करें, बाबा के मधुर महावाक्यों पर गहराई से चिंतन करें। और जो हमारे बड़े भाई बहने हैं उनके गहरे चिंतन का भी लाभ मिलता है। तो जितना ज्ञान योग की गहराई आती है उतना माया की परख आती है। तो इसलिए शुरू से बाबा ने विशेष पुरुषार्थ के लिए भट्टियों का आयोजन किया। भट्टी माना जानते हो ना, ईंटें कच्ची हैं, मिट्टी की बनी हुई, तो उनको भट्टे में डालते हैं। जब वो मिट्टी की ईंटें पक जाती हैं तो रंग रूप भी बदल जाता है और मजबूती आ जाती है। धोबी लोग भी जो मैले कपड़े हैं भट्टी में डालते हैं, गरम गरम पानी में उबालते हैं कि वो मैल निकल जाए और कपड़े स्वच्छ हो जाए। तो बाबा भी कहते हैं ना कि मैं भी धोबी हूँ, सुनार हूँ, सोने को अग्नि में डालते हैं और स्वच्छ सोना बना लेते हैं, खाद निकल जाती है। तो ये हमारी रूहानी भट्टी है, हम आत्माओं को ज्ञान और योग की भट्टी में बाबा डालते हैं। हमारे अंदर जो तमो प्रधानता की खाद है वो निकल जाए, हम भी शुद्ध सोना सतो प्रधान बन जाए। बाबा तो कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, रोज मुरली में देखते हो ना, मुरली से अनुभव होता है ना कि बाबा कितना उमंग उत्साह भरते हैं। हमें पावन बनने का जितना उमंग उत्साह होना चाहिए उससे ज्यादा तो बाबा को उमंग उत्साह ज्यादा है, हाँ, हमें पावन बनाने के लिए। बाबा हमेशा कहते हैं संपूर्ण पावन बन, पूरा सतो प्रधान बनना है, पूरा वर्षा लेना है। अभी भी कुछ दिनों पहले मम्मा के महावाक्य आए थे कि दोनों हाथ में लड्डू नहीं लेना है। कई समझते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पुरुषार्थ करके 21 जन्मों का ले ले, बाकी इस दुनिया का भी सुख ले ले। पर मम्मा ने कहा ना नहीं, पूरी प्राप्ति करनी है, पूरा पुरुषार्थ करना। हमें पूरा बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनना। हमारी तपस्या बहुत ऊंची है, भक्ति में तो तपस्या का ज्ञान ही नहीं है, वो तो हठ और दमन की तपस्या करते हैं। उपवास करेंगे, देह को कष्ट देते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं। हमारी हठ दमन की तपस्या रही है, हमारी प्रवृत्ति मार्ग की तपस्या है। हम स्वयं को, न कि स्वयं के शरीर के लेवल की नहीं, हमारी तपस्या आत्मा शुद्धि के लिए। तपस्या का एक लक्ष्य है आत्मा शुद्धि। जैसे ही आत्मा देह अभिमान में आई, पतित बनी, आत्मा को अच्छा नहीं लगा ना, तो देखो द्वापर में भगवान को याद करना शुरू किया, क्योंकि ओरिजिनल हर आत्मा शुद्ध है। तो जैसे ही अपवित्रता जीवन में आई, भगवान को याद करना शुरू कर दिया। तो हम जानते हैं कि अपवित्रता, विकार और उनके वश होकर किए हुए पाप कर्म दुख और अशांति के कारण है। जैसे ही द्वापर युग में पवित्रता खत्म हुई, दुख शांति का एहसास शुरू हो गया। तो ये मूल सत्य हमें याद रखना है कि विषय विकार ही दुख शांति का मूल कारण है। भल भक्ति में आरती गाते हैं, भगवान को कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं रही, कमजोर बन गई, चाहते हुए भी विकारों से छूट नहीं पाए। वो भगवान को कहते हैं हमें विकारों से छुड़ाओ, हमारे पाप मिटाओ, पर खुद पाप करते भी गए, भगवान को कहते भी हैं और खुद पाप करते रहते हैं। बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ सिखाया। जानते हैं ना, 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ हमारे सिर पर है। जानते हैं? जानते हैं? द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक, दो युग 2500 वर्ष के 63 जन्मों में पाप कर्म किए। तो 63 जन्मों के पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर है। हम कह सकते हैं कि 63 जन्मों का उधार सिर पर चढ़ा है। किसी से उधार पैसा लेते हैं तो जब तक चुकाओ नहीं तब तक क्या रहेगा? तब तक क्या महसूस होता है? टेंशन रहता है ना, कि भाई इनसे उधार लिया है, देना बाकी है। तो 63 जन्मों का उधार, पाप कर्मों का हिसाब सिर पर चढ़ा है। तो बाबा ने हमें 3 बातें सिखाई है। 63 जन्मों का विकर्मों का हिसाब किताब चुकाना है तो पहली धारणा, हमें नए पाप कर्म नहीं करने। हम सबको ये दृढ़ता करनी है। चलो ज्ञान नहीं था तो अज्ञान काल में विकारों में डुबके लगाते रहे, विकारों के वश होते रहे, पर अब हमें सत्य ज्ञान मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है ना? हमारे अनेक जन्मों की भक्ति भावना का फल स्वयं भगवान हमें मिले, भगवान का संपूर्ण सत्य ज्ञान मिला है। वो तो सिर्फ साक्षात्कार करते हैं और खुश हो जाते हैं कि बस भगवान मिल गए, नहीं, हमें तो भगवान प्रैक्टिकल रोज सत्य ज्ञान की पढ़ाई कराते हैं। एक बार एक भाई ने अव्यक्त बाप दादा से कहा, बहुत शुरू की बात, 50 साल पहले की बात, कि बाबा मुझे एक बार साक्षात्कार कराओ। बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बच्चे, बाप का केवल साक्षात्कार चाहिए या साक्षात बाप चाहिए, बताओ क्या चाहिए? बाबा का केवल साक्षात्कार चाहिए या साक्षात बाप चाहिए? हमें तो साक्षात बाबा मिला है, बाबा का सत्य ज्ञान मिला है, बाबा का प्यार मिला है। हम हिम्मत करते हैं, बाबा हमें कदम कदम पर मदद करते हैं, हम एक कदम आगे बढ़ते, बाबा 1000 कदम आगे बढ़ते। तो अब हमारे अंदर इतनी जागृति हो, अवेयरनेस, और हम आत्माओं में इतनी दृढ़ता शक्ति हो कि अब इस ब्राह्मण जीवन में मुझे नए पाप नहीं कर, एक तरफ किए पाप के हिसाब चुकाओ और दूसरी तरफ नए पाप करते रहेंगे तो इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा। और ब्राह्मण बनकर अगर कोई पाप करेंगे तो हिसाब 100 गुना बढ़ जाता है, तो इसलिए साकार मुरलियों में बाबा सदा हमें कहते रहे हैं कि मनसा कितने भी माया के तूफान आवे लेकिन कर्मेंद्रियों से पाप नहीं करना, कहते हैं ना बाबा, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल इतना हो कि कर्मेंद्रिय से पाप नहीं करना, क्योंकि कर्मेंद्रिय से किया माना कर्म का पक्का हिसाब बन गया, पत्थर पर लकीर खींच गई, वो मिटती नहीं। तो ये सबकी पक्की धारणा है ना, हमें नए विकर्म पाप कर्म नहीं करने, दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि इस जन्म में ज्ञान काल में इस जन्म में जो कुछ पाप किए हैं वो सच्चाई से लिख कर बाबा को दे दो। मुरली में आता है ना, अपनी जीवन कहानी सच्चाई से लिख कर बाबा को दे दो, बाबा से क्षमा ले लो, बता दो, अपनी जीवन की किताब खोल दो, बाबा मैं आपका हूं, मेरा ये जीवन है, मुझे बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, ज्ञान अज्ञान काल में किए हुए पाप, बाबा कहते हैं ना, बाबा को अपनी जीवन कहानी लिख कर देंगे तो आधा माफ हो जाएगा। वैसे कर्म सिद्धांत अनुसार माफ नहीं होता है, पता है ना, जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें भोग नहीं है, कर्म सिद्धांत है ये। संसार का खेल कर्म सिद्धांत पर चल, जो करेगा सो पाएगा, लेकिन भगवान के आने पर संगम युग में भगवान की ये स्पेशल ऑफर है कि तुम सच्चाई से बता दोगे तो आधा माफ हो जाए। इसलिए मधुबन आए हैं, अब तो ज्ञान है, समझ सकते हैं मैंने जीवन में क्या पाप किए हैं, तो वो लिख के बाबा को दे दो। पता है ना, बाबा के कमरे में लेटर टू बाबा बॉक्स होता है ना, देखा है बाबा को पत्र है ना, तो उसमें लिख करके हम डाल दें। बाबा को सच्चाई से जब हम बता देते हैं तो मन हल्का हो जाता है, वरना वो किया हुआ कर्म आंखों के सामने, मन की बुद्धि के सामने बार बार आता रहता। बाबा को लिख के देना माना, दोबारा वो भूले नहीं करना। बाबा को किस लिए लिख के देते हैं कि अब दोबारा ये भूल नहीं करे। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से किए हुए विकर्मों का हिसाब किताब योग बल से भस्म करो। इसलिए भट्ठी रखी जाती है कि हम समय निकाल कर अधिक अभ्यास करें, बाबा की याद में बैठें और खुद को पक्का कराएं कि मैं शुद्ध आत्मा, हूं, अनादि आदि मेरा स्वरूप पवित्र स्वरूप है। ये हम खुद को पक्का कराएं, अब हम ये न कहें, न सोचे, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी आदत ऐसी है। नहीं, अब हमें पता है हम शुद्ध आत्मा है, परम पवित्र आत्मा है। रोज खुद को याद कराते। तो बाबा कहते, योग बल से विकर्मों को भस्म करो। इसलिए बाबा के बच्चे, जब जब भट्टी रखी जाती है, बड़ी रुचि से आते हैं, खुशी से आते हैं। संगम युग में हमें दो कार्य करने हैं। 63 जन्मों के उद्धार को चुक्त कर देना है, और दूसरा कार्य हमें क्या करना है, 21 जन्मों के लिए सत्कर्मों को जमा करना है। संगम युग में हमें ये मौका है। अभी हमें सत्कर्म का ज्ञान मिलता है कि आत्मा आत्मभिमानी बनकर शिव बाबा की श्रीमत पर सत्कर्म कर, क्यों हम सेवा करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, क्यों हम तन मन धन सेवा में लगाते हैं। हमें 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बाबा कहते, अभी तुम अपना समय, श्वास, संकल्प, मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, समय, संबंध, संपर्क, अपनी गुण, कला, विशेषता, क्यों हम सेवा में लगा, क्योंकि हमें एक जन्म का जमा 21 जन्मों की प्रारब्ध लेनी है बाबा से। इसलिए अब हम अपना समय, श्वास, संकल्प वेस्ट नहीं करते, निमित्त बनकर सफल करते हैं। आज भी बाबा ने कहा, आज की मुरली पढ़ी होगी, सुनी होगी आप सबने, आज भी बाबा ने कहा, हम बाबा को देते हैं ऐसा संकल्प भी नहीं आना चाहिए। हम तो 21 जन्मों का लेते हैं, तो सत्कर्म करते हुए, सेवा करते हुए, सहयोग करते हुए अभिमान में नहीं आना है। बाबा का है और बाबा के कार्य में सफल करते हैं। मैं बाबा का हूं मीन्स मेरा जो कुछ है वो बाबा का है। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है, कहते हैं ना हम सब, गाते हैं ना, तो सिर्फ बातें थोड़ी, हवा में थोड़ी, मैं बाबा को हूं मीन्स मेरा जो कुछ है, स्थूल, सूक्ष्म, वो भी बाबा का है। श्रीमत पर हम यूज करते हैं। तो ये दो पुरुषार्थ हमें करना है। इसलिए पक्का करना है, आत्मा जब आकर्षण में आती है, आसक्ति अटैचमेंट होता है, तो आत्मा प्रभाव में आ जाती है, देहभान का प्रभाव, देहधारियों का प्रभाव, वैभव पदार्थों का प्रभाव, दुनियादारी परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं, तो हम भूले करते हैं। इसलिए योग का अभ्यास क्यों चाहिए? क्योंकि योग में हम सभी बातों से डिटैच हो जाते हैं। हम न्यारे होने का अभ्यास कर। मैं इस देह से भी अलग हूं। देह के नाम रूप कोई भी बातों के प्रभाव में मुझे नहीं है। मैं आत्मा चैतन्य हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, माइट हूं। योग में हम सभी बातों से न्यारे होकर अपनी आत्म स्थिति में स्थित होते। तो जितना ये अभ्यास हम बढ़ाएंगे, हम कोई भी प्रभाव में, आकर्षण में, आसक्ति में नहीं आएंगे। हम कहते हैं ना, हो गया, मैं एकदम प्रभाव में आ गया, वश हो गया। क्यों वश में हो गए? क्योंकि डिटैच होने की प्रैक्टिस नहीं करते। हम जानते हैं ना, आत्माएं सभी पतित और तमोप्रधान है। हम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब रहना यहां, जीना यहां पर हमें सबसे न्यारा रहना है। इस दुनिया में रहते, लौकिक रिश्ते नाते निभाते, इन आंखों से दुनिया को देखते सुनते भी हमें न्यारा रहना। हमें निरंतर बाबा के प्रभाव में रहना, क्योंकि वो ही सदा पावन है, सदा सुखदाता है, परम है ना, जानते हैं ना बाबा को। इसलिए जितना हम योग अभ्यास करते हैं, तपस्या कौन सी करनी है? हमारी तपस्या कौन सी? एक है देहभान से न्यारा रहे। लोग मानते हैं कि इस दुनिया की जेल में आए हैं, काजल की कोटड़ी में आए हैं, तो कोई ना कोई दाग लगेगा। पर बाबा कहते हैं नहीं। इस दुनिया में रहते भी कमल पुष्प रहना। आप सभी बाबा के बच्चे बहुत महान है, दुनिया सोच नहीं सकती घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र रहना, दुनिया तो सोच ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता, पर बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति और आप सभी वो ही कल्प पहले वाली देवता घराने की आत्माएं बाबा का ज्ञान मिलते ही हमारी दृष्टि वृत्ति बदल गई, जीवन पवित्र बन गया, है ना खुशी सबको। अपनी पीठ थपथपाओ, आप महान आत्माएं हैं, खुद खुद को शाबाशी दो। क्योंकि भल हमारा नाम रूप साधारण है, पर हम आत्माएं महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं, पर हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। विकार का कोई अंश भी न रहे। अगर मन में भी काम वासना के विचार आते हैं, मन में क्रोध उत्पन्न होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, है ना? हमें ग्लानी होती है कि मन में भी गंदगी क्यों हो, हम पूर्ण शुद्ध बनना चाहते हैं। विकार का अंश भी न रहे, ऐसे ही चाहते हैं ना सभी, कि मन में युद्ध होता रहे, क्या चाहते हैं? नहीं, मन में भी विकार ना। कर्म में तो हम पवित्र है, पर मन सा वाचा में भी विकार का अंश ना। अगर ब्राह्मण बनकर अलौकिक जन्म लेकर काम वासना है तो आत्मभिमानी नहीं बन सके। पढ़ाई का पहला पाठ ही नहीं पढ़ सके। इसलिए संपूर्ण आत्मभिमानी बनना ये हमारी पहली तपस्या है। मुझे अपने असली गुणों में स्थित होकर व्यवहार करना है, ये प्रैक्टिकल आत्मभिमानी स्थिति। ब्राह्मण बनकर अगर गुस्सा करते रहते हैं, आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। गुस्सा करने वाले से हर कोई दूर रहते। कहेंगे दीदी हम खुद सेवा कर लेंगे, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते रहे। आत्माओं के प्रिय नहीं बनेंगे। पिताजी गुस्सा करते रहते हैं, वो जैसे ही घर में आएंगे बीवी बच्चे दूसरे कमरे में चले जाएंगे, कहीं बरस ना पड़े, गुस्सा ना कर बैठे, है ना? आत्माएं दूर हो जाएगी हमसे। ड्रामा तो आत्माओं के साथ खेलना है ना। अगर ब्राह्मण बनकर लोभ लालच करते हैं तो भाग्य नहीं बना सकते। धन साधन होते हुए सेवा में सफल नहीं करेंगे, संग्रह करते रहेंगे। देह संबंधों के मोह में फंसे रहेंगे, सबसे बड़ा नुकसान भगवान का प्यार नहीं मिलेगा। बुद्धि उस देहधारी में फंसी रहेगी, ऊपर उड़ नहीं सके, भगवान का प्यार नहीं पा सके। अभिमान में आएंगे तो बाबा कहते हैं जैसे ही अभिमान आया उतरती कला शुरू हो जाएगी। ज्ञान नहीं था, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा रूप बुद्धि पढ़ाई का अभिमान रहता था, अब बाबा के बच्चे बन गए वो अभिमान नहीं है। अब हमें सेवा का अभिमान आ जाता है, सहयोग का अभिमान आ जाता है, अपने पुरुषार्थ का अभिमान आ जाता है, अपनी विशेषता का अभिमान आ जाता है। अभिमान आने से गुण अवगुण बन जाता है, क्योंकि अभिमान का जहर पड़ गया, गुण अवगुण हो जाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य है संपूर्ण निर्विकारी बनना। हमारी पढ़ाई कौन सी है, कौन सी है, हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने, देवता बनना माना क्या बनना है, क्लियर है? देवता बनना माना क्या बनना है? हाँ, महिमा क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न। कोई भी गुण शक्ति की कमी न रहे तो देखो भट्टी में साइलेंस में रहकर एकांत में बैठकर अपने आप को देखो, कौन से गुण की कमी है? कोई भी गुण की कमी न रहे। जो कमी रहती है वही सबको दिखती है ना। देखो आज इतनी ऊंची धारणाएं बाबा के बच्चों ने की हैं। हम पवित्र रहते हैं, रोज अमृत वेले उठते हैं, रोज मुरली क्लास करते हैं, अन्न शुद्धि का नियम रखते हैं, व्यसन फैशन पिक्चर होटल मुक्त रहते हैं। इतनी ऊंची धारणाओं के बावजूद भी जो छोटी मोटी कमियां हैं उसी की बातें हम करते रहते हैं, है कि नहीं? हमारे साथ रहने